ಇತಿ ದೈತ್ಯಪತೇರ್ವಾಕ್ಯಂ ತೀರಾಕರ್ಣ್ಯ ಸಶ್ನುಷ ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ಕ್ಷಣ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತತ್ವೇ ಚಿತ್ತಮಧಾರಯತ್. ಇತಿ ದೈತ್ಯಪತೇರ್ವಾಕ್ಯಂ ನಿತೀರಾಕರ್ಣ್ಯ ಸಶ್ನುಷ ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ಕ್ಷಣ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದತ್ವೇ ಚಿತ್ತಮಧಾರಯತ್.
ಶ್ರೀ ನಾರದ್ ಮುನಿನೆ ಕಹಾ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಣಿ ದಿತಿ ದಿತಿ ಆಕರ್ಣ್ಯ ಸುನ್ಕರ್ ಸ ಸ್ನುಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಿ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತ ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕಾ ಮಹಾನ್ ವಿಯೋಗ ಕ್ಷಣಾತ್ ತುರಂತ ತೆಕ್ತ್ವಾ ಚೋಡ್ಕರ್ ತತ್ವೇ ಜೀವನ್ ಕೆ ಅಸ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮೇ ಚಿಂತಯಂ ಹೃದಯ ಕೋ ಅಧಾರಯತ್ ಲಗಾಯ. ಅನುವಾದ ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೇವಲ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ನಾರದ್ ನೆ ಕಹಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕಿ ಮಾತಾ ದಿತಿ ನೆ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರವಧು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕಿ ಪತ್ನಿ ವೃಷಭಾನು ಸಹಿತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೆ ಆದೇಶೋಂ ಕೋ ಸುನಾ ಉಸ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ತಥಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕೋ ಜೀವನ್ ಕಿ ಅಸಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಮಜನೆ ಮೇ ಲಗಾ ದಿಯಾ. ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಜಬ್ ಕಿಸಿ ಕಾ ಕೋಯಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ವ ದರ್ಶನ್ ಮೇ ಅಧಿಕ ರುಚಿ ಲೇನಾ ಲೇನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಕಿಂತು ಜೈಸೆ ಹಿ ಅಂತ್ಯೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಅಕ್ರಿಯ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ತೋ ವ ಪುನಃ ಭೌತಿಕವಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಲಗ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಹಾ ತಕ್ ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೌತಿಕತಾವಾದಿ ಬಿ ದೈತ್ಯ ಬಿ ಕಭಿ ಕಭಿ ಅಪ್ನೆ ಕಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಹೋನೆ ಪರ್ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸೋಚತೆ ಹೈ. ಭೌತಿಕತಾವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿ ಇಸ್ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಕೋ ಸಂಶಾನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಜೈಸಾ ಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿ ಕಿ ಗಯಿ ಹೈ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ್ ತಥಾ ಈಶ್ವರ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಆರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಿ. ವಿಶೇಷತೆಯ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋಂ ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೀಡಿತ ರಹತಾ ಹೈ ತೋ ವಹ ಈಶ್ವರ ಮೇ ಮನ್ ಲಗಾತಾ ಹೈ. ಅತೇವ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ನೆ ಕಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ ಕಿ ಉನ್ನೇ ಜೀವನ್ ಮೇ ಸುಖ ಕಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ದುಃಖ ಪಸಂದ ಹೈ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಸುಖಿ ರಹನೆ ವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಈಶ್ವರ ಕೋ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಕಿಂತು ಕಭಿ ಕಭಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದುಃಖ ಮೇ ರಹಕರ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಅತೇವ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂತಿ ನೆ ದುಃಖ ಪಸಂದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಹ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸುಅವಸರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಕೃಷ್ಣ कुंती देवी के पास से सदैव को लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि हे दुख खेदपूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी क्योंकि कृष्ण सदैव साथ रहते थे, किंतु जब पांडव सिंहासन आसीन है तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का सुअवसर होता है। ओम अज्ञात मीरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं ष्टपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये अध्याय का ये आखिरी श्लोक है जहाँ ये श्लोक को उच्चारण कर रहे नारद मुनि। आप सबको मालूम है ये जो संवाद है नारद युधिष्ठिर का संवाद है, और संवाद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत शरीर के अनुसार या उसके शोक में व्यस्त हिरण्याक्ष की पत्नी वृषभानु और उनके जो माँ दोनों की माँ दिति शोक में व्यस्त थे, उन शोक को कम करने के लिए शोक से मुक्त कराने के लिए हिरण्याक्ष ने क्या किया, उन्होंने हिरण्यकश्यपु ने प्रवचन दिया। अभी ये श्लोक में पहला शब्द है इति। ये इति शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है, इति इस प्रकार सुन के यानी हिरण्यकश्यपु का प्रवचन सुन के। इति दैत्यपतेर वाक्यम, दैत्यपति ये हिरण्यकश्यपु को दैत्यपति कहा गया है। दैत्यपति मतलब दैत्यों के राजा। दैत्यपति वाक्यम उनकी वाक्यों को इस प्रकार पूरा सुन के। दितिर आकर्ण्य दितिर आकर्ण्य दिति ने सुना, लेकिन कैसे सुना, सहा मतलब उनके साथ में, स्तुषा मतलब उनके जो डॉटर इन लॉ यानी डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं, बहू के साथ यानी हिरण्याक्ष की माँ दिति और हिरण्याक्ष की पत्नी ये दोनों ने सुना। सस्नुषा पुत्र श्लोकम क्षणात् त्यक्त्वा, जैसे उन्होंने सुना क्षणात् त्यक्त्वा पुत्र शोक को उन्होंने उसी क्षण त्याग किया। दूसरा तत्वे परिचिंतयन या तत्वे चित्तम आधारयत, और पुत्र शोक को त्याग करके तत्व की चिंतन में लगने लगी या दोनों ये तत्व का चिंतन करने लगी। तो ये श्लोक का इस प्रकार का अनुवाद है। तो ये एक आचार्य थोड़ा सा दूसरा प्रकार अनुवाद करते हैं, तो उस के ऊपर आधारित होते हुए प्रभुपाद जी अपना टीका लिखते हैं, वो है श्रील वीर राघवाचार्य। अन्य लोगों ने, अन्य आचार्यों ने इसके ऊपर विस्तृत टीका नहीं किया, लेकिन एक आचार्य थोड़ा सा दो तीन लाइन का टीका किए है, इसलिए प्रभुपाद जी मेरे ख्याल से उसी टीका के ऊपर आधारित होते हुए ये शमशान वैराग्य के बात कहते हैं। तो अनुवाद में तो आप देखते हो ये उसी क्षण क्या लिखा है, पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा, उसी क्षण, ये क्षणात् मतलब उसी क्षण पुत्र शोक को त्याग किए और तत्व की परिचिंतन में लगने लगे। तो इसका और एक मतलब है, पुत्र शोक को केवल क्षण के लिए त्याग किए और तत्व का चिंतन केवल क्षण के लिए किए। तो इसके ऊपर आधारित होते हुए प्रभुपाद जी अपना टीका लिखते हैं। तो हम ये आज का जो श्लोक है उसका दो तरीके से समझने के लिए प्रयास करेंगे। एक, क्षणात् इस शब्द का अगर मतलब लेंगे, उसी क्षण उन्होंने त्याग किया, ये मतलब लेते हुए एक व्याख्या करेंगे, और केवल क्षण के लिए त्याग किया करके ये मतलब लेते हुए दूसरा व्याख्या करेंगे। विल हैव टू डिस्कशंस, क्योंकि ये दोनों टोटली विपरीत चीज है। तो सबसे पहला इसका पॉजिटिव मीनिंग लेते हुए, यानी उसी क्षण हिरण्यकशिपु का तत्व विचार का प्रवचन सुनते हुए, उसी क्षण दिति और उनके बहू वो दोनों ने क्या किया, पुत्र शोक को उन्होंने त्याग किया। खास करके दिति ने पुत्र शोक को त्याग किया। शोक को त्याग करने के लिए तत्व का विचार करना अति आवश्यक, तत्व का श्रवण करना अति आवश्यक है। आप सब जानते हो अर्जुन का भी शोक था, शोक संविग्ध मानसा, उनका इतना श्लोक से भरा हुआ था उनका अर्जुन का मन, कि उन्होंने कहा भगवान को, हे भगवान भैक्षम अपि है लोके, मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो कृपया परयाविष्टो विशीदंतम इदं वचः। इस प्रकार इतना सारा शोक से रो रहे थे अर्जुन गांडीव को त्याग करके। तब भगवान ने सबसे पहला उनको तत्व विचार सुनाया। तो ये आत्मा और शरीर के बीच में जो तत्व का विचार होता है, आत्मा जो अमर है और शरीर नश्वर है, इसको श्रवण करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितना हम श्रवण करेंगे हमारा जो आध्यात्मिक बल है वो बढ़ जाता है। जैसे सारा शोक को हम त्याग कर सकते हैं, ये शोक त्याग करने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है हमारी मन को बहुत स्ट्रांग बनाना, बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बनाना, मन और बुद्धि को। ये मन और बुद्धि का जो पुष्टि है, जो स्ट्रेंथ है, वो है तत्व विचार से होता है। ये तत्व विचार अति महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भगवान भक्तों के अनेक गुणों को वर्णन करते हुए 13वें अध्याय में, वो आखिरी में या 8वें श्लोक से 12वां श्लोक में उन्होंने 19 भक्तों के लक्षणों को वर्णन करते हैं। उनमें से दो लक्षण हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। एक है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, दूसरा है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहला चर्चा करेंगे आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। ये आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। नित्यत्वम मतलब हमेशा, हमेशा क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में, हम जगत में कोई भी वस्तु को देखते हैं या सुनते हैं, हमको ये ध्यान में होना चाहिए, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये कुछ भी नहीं है बल्कि कुछ गुणों का कुछ खेल है, उसके अंदर कोई सत्य नहीं है, ये केवल कुक्षणिक मात्र है। मान लीजिए किसी के जीवन में दुख आता है, तो ये समझना चाहिए कि दुख उतना समय के लिए रहता है जितना पहले हमारा सुख था। कुछ समय के लिए हमारा सुख था, बाद में चला गया, बाद में दुख आया, जैसे सुख आके चला गया, दुख भी आके चला जाएगा। तो अस्तित्व में ये जो मैं ये आत्मा होने के नाते ये जो शारीरिक या इस जगत के जो सुख और दुख से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार का जो तत्व विचार है ये अति महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसको आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व इसलिए बोला जाता है, नित्यत्वम क्यों बोला गया है, ऐसा नहीं कि बस कुछ समय के लिए हमने कुछ भगवद गीता या भागवत सुन लिया और वो खत्म हो गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं 13वें अध्याय की आखिरी श्लोक के आखिरी तात्पर्य के आखिरी लाइन में कि बाई कॉन्टेम्पलेशन लीड्स टू रियलाइजेशन। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर उस प्राप्त किया ज्ञान के ऊपर विचार नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन नहीं किया जाता है, तो वो ज्ञान जो है उसका कोई फल नहीं होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो तो अच्छी तरीके से उसको चर्वण करके नहीं खाया जाता है तो अंदर जाके वो हजम नहीं होता है, अंदर जो जाके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उल्टा रिएक्शन होता है। इसलिए जो भी हम खाते हैं उसको हजम करके खाना चाहिए। तो ये जो चर्वण है ये अति महत्वपूर्ण कार्य है हजम करने के लिए। तो वैसे ही ज्ञान को हजम करने के लिए ये आध्यात्म ज्ञान का नित्य चर्वण करना चाहिए। जैसे आप उदाहरण दिया जाता है गाय का, आपने गाय को देखा होगा वो घास को बहुत खा लेता है, खा के क्या करता है, उसका एक पेट है वो उसका मुंह और पेट के बीच में और एक पेट होता है उसके अंदर रखता है। उसके बाद जब आराम से बैठ जाता है गाय तो क्या करता है, वो आप देखे होंगे वो चबाता रहता है। वो क्या करता है, अंदर वाला जो चीज़ है अभी तक अंदर वाला पेट में नहीं गया वो घास, वो बाहर निकालता है, बाहर निकाल के फिर से चबा के फिर जो अंदर वाला जो पेट है उसके अंदर डालता है। तो ये क्यों है, क्योंकि अगर सीधा अगर पेट में डाल दिया जाए तो बराबर चबाए बिना तो वो हजम नहीं होता है। तो वैसे ही जो हमने भागवत गीता क्लास में भागवत में जो सुना है उसके ऊपर परिचिंतन चिंता करना ज़रूरी है। जैसे चिंता किए बिना हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान पकता नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन जो है हमारा विधि है। लेकिन फिर भी भगवान भगवद्गीता में माम अनुस्मरण बाद में कहते हैं भगवद्गीता में अंतकाले च मामेव स्मरम। तो ये जो स्मरण है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। क्यों जोर दिया है, क्योंकि अगर श्रवण श्रवण के ऊपर मनन नहीं किया जाएगा तो वो स्मरण में बदली नहीं होता है। तो इस श्रवण के ऊपर मनन करना अति आवश्यक है। इसलिए श्रवण अवस्था है, मनन अवस्था है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मई एव मनादस्व मई बुद्धि निवेशया निवेश स्थिति मई एव अतोर्धम न संशय अत चित्तम समाधातुम। इस प्रकार का चित्त अगर नहीं है तो क्या करो, अभ्यास करो। तो अभ्यास के अंतर्गत ये आता है कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। बार बार ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसके ऊपर मनन करना अति आवश्यक है कि जब कोई भी जगत में कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, ये मनन करते करते क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान जो है नित्य हमारे साथ में रहता है। खास करके ये जो चाणक्य मुनि कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं, तीन अवस्थाओं में हमारा जो चेतना है उसको हमेशा बना के रखना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद जो हमारी मानसिक दशा होती है उसको हमेशा बना के रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रवचन हो गया बस खत्म हो गया, चलो अभी जैसा थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रवचन में बैठते हैं तो एक प्रकार का वैराग्य आता है, क्या मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, बेकार जीवन है, यही सत्य है, सब लगता है। लेकिन जैसे प्रवचन समाप्त हो गया, उठ गए थोड़ा सा दो तीन लोगों से मिले, बातचीत करते हुए, पूरा हंसी मजाक करते हुए पूरा हम लोग भूल जाते हैं। तो ये प्रवचन में या भगवद्गीता भागवत के पठन में जो हम पढ़ते हैं उसको ये मन में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा घड़ा है जिसके अंदर पानी भरते जाओगे उसके अंदर छेद है तो क्या चले, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो चाणक्य मुनि कहते हैं कि ये सबसे पहला प्रवचन में जो बैठने के बाद जो मानसिकता होती है, उस मानसिकता को जो पूरा दिन अगले प्रवचन तक बना के रख सकता है वही व्यक्ति सुना, नहीं तो कोई और व्यक्ति नहीं सुना है। दूसरा, जब हम बीमार पड़ते हैं उस समय कि हमारी चेतना क्या होती है, ऐसी चेतना होती है क्या फायदा, देखो ये शरीर इतना दुखदाई है, क्यों मिला ये शरीर, क्या फायदा, मैं सोचा था कि वो करूँगा ये करूँगा, एक प्रकार की नम्रता की भाव आती है कि हमारी शक्ति शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है। जो बीमार अवस्था की जो चेतना है एक प्रकार का वैराग्य था शरीर, मैं सोच रहा था इससे इतना सुख प्राप्त करूँगा, लेकिन अस्तित्व में शरीर तो है, सुख का साधन नहीं है, वो केवल दुख का ही साधन है। तो ये जो भावना है कब आता है, जब हॉस्पिटल में बीमार पड़ते हैं ना तब आता है। ये तीसरा दूसरा है। और तीसरी मानसिकता है जब हम शमशान में जाते हैं, जब कोई शमशान में जाता है तब लगता है कि देखो ये चला गया, मैं भी लाइन में हूँ, इतना सब कुछ किया, कुछ काम आया मृत्यु के समय में, ऐसा बहुत सारा विचार आता है मन में। खास करके शमशान में जाओगे, कितना भी दुष्ट शैतान हो, कितना भी असुर हो, कितना भी नटखट वाला हो, कितना ही वो टाइम पास वाला हो, शमशान में जाते वो सीरियस हो जाता है जीवन के साथ। तो चाणक्य पंडित कहते हैं ये जो शमशान में जाने के टाइम में जो उस टाइम में जो मानसिकता है प्रवचन के बाद या बीमार अवस्था की चेतना और शमशान में जाने की बात चेतना, ये तीन जगह की जो चेतना जो है, जो व्यक्ति हमेशा बना के रख सकता है वो व्यक्ति जो है वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। यानी दूसरे शब्दों में वो वापस बीमार नहीं पड़ेगा। अगर वो शमशान घाट में जाके उस समय की जो मानसिकता पूरा जीवन पर बना के रख सकता है, वापस उनको शमशान घाट का दर्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो जाएगा फिर भूल जाएगा फिर वापस जाएगा, तो ये जो चक्र है संसार का चक्र में फंस जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। केवल एक घंटा में भगवद्गीता पढ़ लिया हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि आपने भगवद्गीता पढ़ा, हाँ पढ़ लिया हो गया है, तो हो गया मतलब क्या, हो गया वो नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा हमारे चित्त में बना के रखना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने आके कहा कि प्रभु जी मैं भगवद्गीता पढ़ता हूँ तब तक ठीक रहता है, प्रवचन में बैठता हूँ तब ठीक रहता है, बाद में ऐसा क्यों फिर वापस वही चालू हो जाता है। मैंने कहा ये सही बात है, ये जो मन है वो कुत्ते के पूंछ के बराबर है, जब तक उसको पकड़ के रखोगे वो सीधा रहता है, जैसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर वापस टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए उसको पकड़ के रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रवचन में बैठने के बाद तब तक बैठे रहोगे, तब तक जो वक्ता है या भगवद्गीता पढ़ते रहोगे तब तक ये बटन है वो आपका मन को सीधा पकड़ के रखता है। लेकिन जैसे उठने के बाद उसको वापस टेढ़ा नहीं होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में। एक जगह हम प्रवचन में सुन रहे थे, उसी को दोहराएंगे जो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज हमको कह रहे थे। तो ने कहा उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला कि जो भी हमने सुना है उसको आज के दिन जो भी मैं देखता हूँ वो उसके साथ रिलेट करना चाहिए, रिलेट मतलब उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये संबंध जोड़ने की जो जो विधि है उसके लिए हमारे मन को प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं प्रवचन के लिए आया था, आते आते लोहिताक्ष प्रभु जी ने मुझे कहा प्रभु जी कल से लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर है, भागवत कथा है चरनी रोड में, जिस दिन रथ यात्रा था इधर थाना में उसी दिन चरनी रोड से करीबन 60-70 लोग आए थे। तो 60-70 लोग आए तो वापस जब घर गए तो उनको मालूम पड़ा उनके बिल्डिंग में कुछ लोग नासिक की यात्रा में गए थे और यात्रा में जाते जाते रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए, 9 लोग मर गए, 9 माताएं विधवा हो गई। तो अभी ये बात सुनते ही तो हमको क्या करना चाहिए, को आज का ये श्लोक है उसके साथ कैसे उसका संबंध है वो रिलेट करना चाहिए। तो आप जाते हो, क्लास समाप्त हो जाता है, समाप्त होते होने के बाद प्रसाद लेते हो, होने के बाद कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के आया, न्यूज़पेपर पढ़ के कहा कि देखो उधर एक बड़ा कंपनी है, वो कंपनी का मालिक ने धोखा दिया, हजारों लोगों का नौकरी जो है अभी खतरे में है, आपको ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला। जब आप उस न्यूज़ को सुनते हो, उस खबर को सुनते हो, तो क्या करना चाहिए, भगवद गीता भागवत का जो श्लोक है ये आज जो चर्चा किया उसके साथ क्या संबंध है उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो भौतिक बातें शुरू हो गया। इसलिए भगवान भगवीता में कहते हैं कि नान्य गुणेभ्य कर्तारे यथा दृष्टा अनुपश्यति, ये अनुपश्यति अति महत्वपूर्ण है। तो भक्तिदेव बोर्ड महाराज कह रहे थे, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर ए वर्स ऑफ भगवद्गीता एट एवरी थिंग वॉट एवर यू सी, दैट मीन्स यू आर कृष्ण कॉन्शियस। जब भी कोई भी घटना को देखते हो या कोई भी घटना को सुनते हो, जब कोई भी दृश्य दिखाई पड़ता है, तो उस समय हमारे मन में क्या विचार हो रहा है, क्या यह शास्त्र के अनुसार कोई भी प्रसंग के साथ कोई विचार हो रहा है, कोई भागवत का कोई प्रसंग के साथ उसका जोड़ना हो रहा है, तो ये विचार मन में आना चाहिए, तब हमारा आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व कहा जाता है। क्योंकि खाने के टाइम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, खाने के बाद कितना हजम करते वो महत्वपूर्ण है। खाने से कोई पुष्टिवाल मन नहीं बनता है, बहुत सारा खा सकते हैं लेकिन अगर हजम नहीं होगा तो क्या उसका शक्ति प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसलिए भागवत में या भागवदगीता क्लास में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बैठने के बाद उसके ऊपर विचार किया जाता है। तो अस्तित्व में रियलाइजेशन या साक्षात्कार जो सुना हुआ चीज के ऊपर मनन करने से होता है। मान लीजिए आप रास्ते में जाते हो, कोई भी ये प्रवचन सुन के आप देखते हो एक एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट तो देख के क्या सोचोगे, किसी को लॉटरी टिकट मिला या कोई पोस्टर देखते हो, वॉलपेपर देखते हो, तो इन सब को कैसे भगवद गीता भागवत के श्लोकों के साथ या सुना हुआ प्रवचन के साथ रिलेट करोगे, कोरिलेट करोगे, तो ये अति महत्वपूर्ण है। जैसे एक बार मेरे शिक्षा गुरु ने एक बार मुझे मंगाया, अखबार मंगवाया, मैंने कहा कि अरे मैं तो आया हूँ तो ये सबसे दूर रहने के लिए, वो समय में पूरा ज्वाइन नहीं किया था, तो उनने कहा कि मुझे 5 रुपये दिए, जाओ न्यूज़पेपर खरीद के आओ। तो मैंने कहा कि मुझे तो न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत आदत है, मैं उससे दूर बचने के लिए आया हूँ, आप न्यूज़पेपर क्यों खरीदवा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ लेके आओ, तो लेके आए। तब उन्होंने कहा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ो, पहला हेडलाइन पढ़ाया, तो उस हेडलाइन के ऊपर उन्होंने भगवद गीता के 15 श्लोकों को कोट करके आधा घंटे का प्रवचन दिया। बाद में कहा कि और एक हेडलाइन पढ़ो, और एक हेडलाइन पढ़ा, तो उन्होंने फिर वापस भागवतम के 3 लीलाओं को सुना के उस हेडलाइन के ऊपर उन्होंने व्याख्या दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मैं तुमको अगले दिन तक ये न्यूज़पेपर में जितने भी हेडलाइंस हैं पढ़ो, 4-5 मैंने पढ़ा और हेडलाइंस छोटे छोटे थे, उन्हें कहा कि ये हेडलाइन के ऊपर गीता और भागवत के ऊपर आधारित होते हुए तुम एक लेख लिखो। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो न्यूज़पेपर एक भौतिक चीज़ है लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हो। मैंने प्रश्न पूछा, मैं तो गीता सीखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने ये बात को कहा कि प्रत्येक वस्तु इस जगत में कुछ भी देखते हो उसको किस प्रकार गीता भागवत से संबंध जोड़ सकते हैं उसके ऊपर आधारित है, तुम कितना कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना भावित बना के रख सकते हो। एनीथिंग वॉट एवर यू सी, जैसे आपको मालूम है प्रभुपाद जी एक कार ड्राइवर, कार रेसिंग होता है ना ऐसा, कार रेस, उनके साथ संवाद में है। तो वो व्यक्ति आए तो प्रभुपाद जी पूरा कार रेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। कार रेस के बारे में चर्चा करते करते वो सोचा कि अरे मैं तो सोचा कि ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये तो कार रेस के बारे में मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा जानता है। ऐसा सोचने लगे, ये भी एकदम मज़े से कार रेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी बहुत मज़े से कर रहे थे। करते करते प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा उनसे, अच्छा ये बताओ जब आप कार रेस में जाते हो आपका 250 मील पर आवर, 250 माइल्स पर आवर इतना स्पीड से जा रहोगे और एकदम आपका एक एकदम स्टीप कर्व आता है, एकदम ऐसा घूमना होता है, वो टाइम में वो क्षण में आप ब्रेक लगाए वो ब्रेक फेल हो गया तो क्या करोगे? तो उसने कहा क्या है इतना स्पीड में ब्रेक फेल हो गया और टर्न लेना है तो वो टाइम में कोई बचा नहीं सकता, केवल भगवान बचा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ वेरी गुड, तुमको मालूम है भगवान कौन है? तब से प्रभुपाद जी वाप शुरू हो गया। तो क्योंकि उन्हें भगवान शब्द बोलते ही तो भगवान कौन है क्या है गीता का उनको पूरा आधा घंटा समझाए और वो बेचारा चला गया। तो भले ही वो कार रेस वाला था उसके साथ क्या संबंध है, लेकिन उसको भी कार रेस को भी गीता के साथ जोड़ना, अंतकाले च मामेव स्मरम, ये केवल एक प्रचारक का नहीं बल्कि एक साधारण भक्त का भी इस प्रकार का कड़ा हमको होना चाहिए। वन शुड डू दैट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सुना हुआ चीज़ है, पढ़ा हुआ चीज़ है, उसको कैसे प्रत्येक घटना के साथ उसके साथ संबंध जुड़ा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये पहला अभ्यास हमको डालना चाहिए। दूसरा चीज़ भक्ति विद्यापूर्ण महाराज ने कहा कि ये तो मानसिक प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग टू द माइंड हाउ टू रिलेट। दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूं, भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको भगवान हमेशा याद रहते हैं, ऑलवेज विल बी देयर। इसलिए जब कहीं भी बाहर भी जाते हैं, कहीं भी होता है, तो ये आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए भक्त लोगों के साथ संपर्क बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार रविवार को आ गया और चला गया, ख़त्म हो गया। प्रत्येक दिन, हो सकता है तो प्रत्येक घंटा हमेशा भक्तों के संपर्क में होना चाहिए। वन शुड बी ऑलवेज विद इन एसोसिएशन डिवोटीज। बाद में का तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि ये श्लोकों को याद करना, खास करके आपके पॉकेट में पैसा रहता है, अनेकों चीज़ें रहता है, उसके साथ में पॉकेट में एक चीज़ होना चाहिए जो हमको हर पल कृष्ण का स्मरण दिला पाए या कृष्ण के भक्ति को उसने को स्मरण दिला पाए। तो जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होता है, भले ही हम कितना भी प्रकार का श्रवण करें, कितना भी घंटे बैठे, जैसे कुंजरा शौचवत ऐसा हो जाता है। कुंजरा शौचवत मतलब क्या है, एक हाथी का स्थान के बराबर हो जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए आध्यात्म ज्ञान तत्व। दूसरा है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम मतलब क्या है, हमेशा ये तत्व ज्ञान का जो दर्शन है उसको अभ्यास करना। जैसे कि कुछ ऐसे भागवत गीता और भागवत के श्लोक होते हैं उसको बार 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 पठन करना। ये बार बार पठन करने से वो श्लोक का जो अर्थ है अपने हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है। तो उसको व्यक्ति को प्रत्येक तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो श्लोकों में इतना शक्ति है, खास करके भगवद गीता के श्लोकों में, ये स्वयं भी अनुभव किए हैं और स्वर भक्तों ने प्रयोग भी किया है, अनुभव किए हैं कि मान लीजिए कि एक श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करणे वचा। ये खाली श्लोक है, केवल शब्द है, अद्वेष्टा द्वेष नहीं करना चाहिए, सर्वभूताना मैत्री करुणा, एक श्लोकों को बार 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 पुनरावृत्ति करने से वो श्लोक का जो मतलब है अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसको बोला जाता है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आप अपने हृदय में तत्व ज्ञान का दर्शन कर सकते हो। कैसे दर्शन कर सकते हो, अभ्यास के द्वारा दर्शन कर सकते हो। इसलिए इन श्लोकों को बार बार पठन करना, बार बार एक सुना हुआ भागवतम को, भगवद्गीता को श्रवण करना अति आवश्यक है। तो ये करने से कोई भी अवस्था में, कितना भी अवस्था में, कोई भी दुर्बल अवस्था में क्यों ना हो, वो कभी भी शोक नहीं करेगा। ये नेवर एवर बी अफेक्टेड विद दिस लैमेंटेशन। तो ये शोक संविग्न मानसा, अर्जुन इससे मुक्त क्यों हो पाए, क्योंकि ये भगवद्गीता को अच्छी तरह से उन्होंने श्रवण किया। अभी पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा, उसी क्षण पुत्र को शोक को उन्होंने त्याग किया, और तत्वे चित्तम अधारयत। और दिति ने क्या किया, तत्वे चित्तम, ये तत्व में अपना चित्त को लगा दिया, पुत्र शोक को त्याग करके तत्व में अपना चित्त को लगाया। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, जितना हम भौतिक सुख और दुख से प्रभावित होते हैं उतना हम कृष्ण भावना से दूर है। भक्त का मतलब है उनका मुख्य लक्षण होता है, या मिनिमम लक्षण होना चाहिए, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हम ये भौतिक सुख दुख के साथ प्रभावित है तब तक शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं किया हमने। जब तक मान अपमान के प्रभाव प्रभावित हो जाते हैं, जब कोई मान देता है तो एकदम फूल जाना, कोई अपमान करते तो एकदम दुखी हो जाना, जब तक इस प्रकार की अवस्था में है तो तब तक शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त नहीं हुआ समझना चाहिए। भगवद्गीता में कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, मेरा जो परा भक्ति है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो ये अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति। तो अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है अभी ये जो सेंटिमेंट्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, अरे मुझे तो पूछा नहीं, मुझे तो बोला नहीं, मेरा नाम लिया नहीं, और मुझे इस प्रकार का दुख मिल रहा है, उसने ऐसा कहा, तो ऐसे ऐसे बातों से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, इसका मतलब है ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं है, तो इसका मतलब है शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि तत्वे चित्तम माधरयत, अगर किसी का चित्त जो है तत्व ज्ञान में एकदम मग्न है तो वो व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। कितना भी कुछ भी करो वो कैसे रहता है कि एक जैसे जड़ बरत है, तो उनका कोई भौतिक चीज के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है, ऐसा स्थिति में पहुंच जाता है भक्त। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु का प्रवचन सुन के दिति ने ये दो चीजें किया, एक है पुत्र शोक को त्याग किया, दूसरा है तत्व ज्ञान में अपना चित्त को लगा दिया। अभी दूसरा हम इसका श्लोक का मतलब लेंगे जिसके आधारित होते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जो श्री वीर राघवाचार्य लिखते हैं क्षणाद एवा, विवा को उन्होंने कहा एवा, एवा मतलब केवल क्षण मात्र के लिए। तो ये दिति का ये तत्व ज्ञान में चित्त लगाना, पुत्र शोक को ये से मुक्त हो जाना, ये कितना समय के लिए हुआ, केवल थोड़ा टाइम के लिए हुआ, क्षण मात्र के लिए हुआ, ओनली फॉर एक सेकेंड। क्यों, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का प्रवचन में थोड़ा कमी था। वीरराघवाचार्य कहते हैं जो आत्मा शरीर के बीच में जो भेद है, वो भेद से, वो ज्ञान से उत्पन्न हुआ वैराग्य है, वो क्षणात होता है। तो ज्ञान योग से उत्पन्न हुआ वैराग्य जो है वो कैसा रहता है, क्षणात, क्षण मात्र के लिए रहता है। लेकिन भक्ति से उत्पन्न हुआ वैराग्य जो है वो स्वाभाविक, सहज और नित्य होता है। तो ये पूरा भागवत का दूसरा अध्याय में पहला स्कंद का इस बात को वर्णन किया हुआ है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्यास वैराग्यम ज्ञानम च देहेतुकम। ये कहा गया है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भगवान वासुदेव के प्रति जो भक्ति योग जो करता है, भक्ति में संलग्न रहता है, उस व्यक्ति को जनयत्याशु तुरंत ही शीघ्र ही होता है ज्ञानम च दहेतुकिम, ज्ञान और वैराग्य वो तुरंत ही शीघ्र ही आ जाता है, अपने आप अनायास बिना प्रयास का जाता है। लेकिन वही भागवत का पहला स्कंद का दूसरा श्लोक में, दूसरा अध्याय में कहा गया है कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मानाम भक्त्याश्रुत्या गृहीत्या, ज्ञान और वैराग्य के साथ व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है, एक जगह लिखा हुआ है, दूसरा जगह लिखा हुआ है ज्ञान और वैराग्य से युक्त होते हुए भक्ति करो। तो ये दोनों में हम कैसे समझें? सबसे पहला ये ध्यान में रखना चाहिए, जो शुरुआत में जो साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति की अवस्था में हमको ज़बरदस्ती ज्ञान और वैराग्य को अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे से व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति राग उत्पन्न होता है तो क्या होगा, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, उसको कोई उनको कोई अलग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए हमको कि जब हम लोग ये भक्ति करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको दूर रहना होगा, वैराग्य, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञान है उनको अभ्यास करना होगा। करते करते जब भगवान कृष्ण के प्रति जितना राग उत्पन्न होता है वो भगवान कृष्ण के अनुराग से उत्पन्न वैराग्य है, वही स्थायी वैराग्य है, बाकी सब जो वैराग्य है वो अस्थायी वैराग्य है। तो इधर ये चित्तम क्षणात् चित्तम अधरायत, पुत्र शोक क्षणात् त्यक्त्वा, पुत्र शोक को केवल कम समय के लिए, कुछ ही समय के लिए त्याग कर पाई। क्यों त्याग कर पाई? कुछ ही समय के लिए, लंबा समय के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो प्रवचन है वो भक्तिमय प्रवचन नहीं था, भगवत ज्ञान नहीं था, तो केवल आत्म तत्व था, उसके अंदर भगवत तत्व नहीं था। तो भगवत तत्व बिना केवल आत्म तत्व के ऊपर विचार किया जाता है, वैराग्य जरूर आता है लेकिन वो क्षणिक होता है, लंबा समय के लिए नहीं रहता है। अगर लंबा समय के लिए कोई व्यक्ति सच में वैराग्य प्राप्त करना चाहता है तो उनको भगवत तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए आत्म तत्व के साथ साथ। तो हिरण्यकश्यपु के प्रवचन में कहीं भी ये वर्णन नहीं आया कि हिरण्यकश्यपु भगवान कृष्ण का गुणगान किए। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण का सीधा गुणगान नहीं किया जाता है तब तक जो है वो पूर्ण वैराग्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा संपूर्ण तरीके से शोक नाश भी नहीं होता है। ये बात हम जानते हैं, व्यासदेव जब आए, नारद मुनि जब घूमते घूमते आए व्यासदेव के पास, व्यासदेव को दे उन्होंने पूछा आत्मज्ञानम ब्रह्म तत्सनातनम तथापि सोचस्यात्मना कृतार्थ है वा प्रभु, हे व्यासदेव ऐसा क्या हो गया तुमको, मुंह लटका के बैठे हो तो खिन्न होके बैठे हो कि ब्रह्म तत्सनातनम, सनातन ब्रह्म का तुमने वर्णन किया है, आत्म तत्व का वर्णन किया है उपनिषदों में, ये सब कुछ करने के बाद भी आप इस प्रकाश का संतुष्टि, ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ किया नहीं है, शोक व्यक्त कर रहे हो, क्यों है? तब नारद मुनि से व्यासदेव ने कहा कि आप मेरे गुरु हो तो आप ही बताओ, शिष्य के अंदर मैं तो आपका शिष्य हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, आपसे बढ़कर और भला कौन जान सकता है? तब नारद मुनि ने कहा कि आपका ये शोक का कारण है कि भले ही आपने आत्म तत्व का वर्णन किया, भगवत तत्व का वर्णन नहीं करने की वजह से आपका जो शोक अभी भी गया नहीं है। तो ये बात है कि पुत्र शोकम क्षणात्, ये केवल क्षण मात्र के लिए त्याग कर पाए पुत्र शोक को। क्यों? क्योंकि ये कुत्ते का पूंछ जो है वो पूरा सीधा करके कुछ ही समय के लिए सीधा कर पाई, पूरा समय के लिए अपने आप सीधा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भगवत तत्व का विचार नहीं हुआ, भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं शमशान वैराग्य के बारे में। शमशान वैराग्य जो है हम हमेशा अनुभव करते हैं कि लोग जैसे जैसे आप किसी भक्त को जुड़ते हो तो तुरंत आते आते बहुत भाव व्यक्त करते हैं। परसों मैं एक भक्त से मिला, वो व्यक्ति ने कहा प्रभु जी मंदिर में एक व्यक्ति आया था तो आते आते ही मैं उनसे बात किया, सब कुछ दिखाया, बहुत प्रभावित हो गया, प्रभावित होने के बाद मैंने कहा उनको लाइफ मेंबर बनने के लिए, उन्होंने कहा तुरंत मंजूर हो गया, लाइफ मेंबर मैं कर दूंगा कर दूंगा। हाँ, लेकिन जैसे वो फॉर्म लेके घर गया, उसने बोला कि मैं शाम को आके आपको चेक दूंगा, लेकिन जैसे घर गया पता नहीं क्या हो गया, मेरा फोन उठाता ही नहीं है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि लोग जो है अपना थोड़ा सा वैराग्य दिखा देते हैं, लेकिन वो क्या वैराग्य है, वो वैराग्य ये शमशान वैराग्य जैसा है, लेकिन जैसे वापस जाने का पुनर्मूषिको भवा, वो कहानी है ना, ऐसा हो जाता है उसका मन। ये क्यों है, भगवत ज्ञान का नहीं होने के कारण। तो इसलिए भक्तों को ज्ञान में रखना चाहिए कि भगवान के प्रति राग नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हमारे जीवन में दुख आए। कुंती महारानी का उदाहरण प्रभुपाद लिखते हैं, ये स्वाभाविक है, जब किसी के घर में दुख आता है तो भगवान का शरण लेता है। आर तो जिज्ञास अर्थार्थ ज्ञानी च बर्तर स्वभाव। तो एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि बाय हाउ कर क्रुक वन शुड थिंक ऑफ कृष्ण, बाय हाउ कर क्रुक वन शुड बिकम कृष्ण कॉन्शियस। अगर स्वाभाविक राग अनुराग भगवान के प्रति नहीं है, जिसके द्वारा स्वाभाविक स्थायी वैराग्य स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भले ही दुख ही क्यों ना हो मेरे जीवन में आए, लेकिन कृष्ण का विस्मृति कभी ना हो। लेकिन कृष्ण का विस्मृति से बढ़कर और कोई दुख है ही नहीं, देयर इज नो मोर मिजरी देन फॉरगेटिंग कृष्ण। तो इसलिए अगर दुख आ रहा है जीवन में, तो उस दुख में कृष्ण का स्मृति हो रहा है तो अच्छा है, ऐसी दुख अच्छा है। जैसे लोहिताक्ष प्रभु ने इस बात को कहा कि ये जो 9 लोग मर गए, तो ये मृत्यु के हिसाब से वो लोगों ने बड़ा भागवत कथा को आयोजन कर रहे हैं। अगर मान लो कि वो लोग नहीं मरते तो भागवत कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, तो अच्छा कि नहीं मर गए। तो अगर ये बात हम कहेंगे पब्लिक में, लोग सोचेंगे कैसे साधु है। भले ही कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन सत्य बात यह है, अगर वो मरते नहीं है तो ये भागवत कथा रखते नहीं, तो अच्छा है वो मर गए, है कि नहीं। तो ये बड़ा कठोर और क्रूर विचार हो सकता है, ऐसा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सत्य यही है कि जैसे मैंने श्लोक को तैयारी करके आके बोलने के लिए आया, तो लोहिताक्ष प्रभु ने इस बात को जैसे कहा, तो मेरे मन में सबसे पहला बात यही आया कि वो लोग मर गए तो उनके मरने के वजह से ये लोग भागवत कर रहे हैं, उसके वजह से जो सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो रहा है, और जो मर गए उनके नाम पे भागवत हो रहा है तो उनका भी उद्धार हो रहा है। मान लो वो मरते नहीं ना, जो उनका उद्धार होता, उनके पति का उद्धार होता, ना पत्नी का उद्धार होता, दोनों बैठ के भौतिक जीवन में मजे करते रहते। तो इसलिए इस प्रकार का जो मृत्यु है वो अच्छा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ये कुंती महारानी की भावना है, वो कहती है, हे कृष्ण अभी हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि हम अभी हस्तिनापुर का राजा बन गए, हम अभी सुखी अवस्था में इसने छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा क्या फायदा ऐसा सुख का जिसमें आपका दर्शन प्राप्त ना हो, इससे अच्छा है कि दुख आवे जीवन में। विपद संत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम, क्योंकि आपका दर्शन करने से वापस इस भौतिक जगत को दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बार बार मेरे जीवन में दुख आए। क्योंकि अगर आपका ये कंडीशन है कि हमारे जीवन में दुख रहेंगे तभी मैं रहूंगा, तो ये कंडीशन मंजूर है, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ ऐसी कंडीशन को रखा था कि जब भी वो दुखी थे तभी वो रहते थे साथ में। कुंती महारानी ने कहा कि आपका ऐसा कंडीशन है कि हम जब दुख आता है हमारे जीवन में तभी आप मेरे साथ रहोगे, तो मैं चाहती हूँ कि दुख हमेशा मेरे साथ में रहे। तो इस प्रकार की जो शुद्ध भावना है भक्तों के जीवन में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस कुंती महारानी का इस प्रसंग का निष्कर्ष ये है कि भले ही कितना भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमको भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए, भगवत तत्व ज्ञान का विचार छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान का जो स्मृति है वो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो अपक्व भक्त भक्त होता है, ये बड़ा विचित्र चीज़ है, हमने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया है, जब भौतिकवादी होता है उनके जीवन में दुख होता है तो भगवान के पास आते हैं, लेकिन एक भक्त होता है, दीक्षित भक्त है, वो एकदम हर हफ्ता मंदिर में आना शुरू करता है, एकदम फर्स्ट क्लास भजन हो रहा है, पूछेंगे प्रभु जी कैसे हो, फर्स्ट क्लास बढ़िया है, लेकिन कुछ समय के बाद आना बंद हो जाता है। तो बाद में पूछेंगे तो प्रभु जी आपका आप क्यों नहीं आ रहे हो, प्रभु जी क्या करें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, इससे मेरा जपा भी छूट गया। अभी ये बड़ा आश्चर्य की बात है, पता नहीं क्या भगवान का क्या खेल है। भौतिकवादी जब दुखी होते हैं तो भगवान के पास आते हैं, लेकिन भक्त लोग जब दुखी आते हैं भगवान को छोड़ के जाते हैं। बहुत अनुभव किया है, बहुत बहुत लोगों को देखा है पिछले 10 सालों में, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख आया है वह मंदिर आना बंद कर दिया, बहुत नुकसान हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो वो समय में अस्तित्व में वो भगवान के प्रति ज़्यादा शरणागत होना चाहिए, बल्कि वो क्या करता है भगवान से दूर चले जाता है। क्यों? भक्तों के ऊपर जो माया का खेल है वो दूसरी प्रकार होता है, अभक्तों के ऊपर माया के खेल दूसरी प्रकार होता है। भक्तों के ऊपर ये माया किस प्रकार खेल करती है, देखो तुम इतना भक्ति करते हो भगवान का, इतना करने के बाद भी तुमको भगवान ने क्या किया देखो, हो इतना विश्वास है तुम्हारे ये भक्त के ऊपर, इतना तुम विश्वास करते हो, लेकिन तुमने देखो ये भक्त ने तुम्हारे साथ क्या किया, सबका नाम सबको पूछा लेकिन तुमको नहीं पूछा। तो इस प्रकार का जो माया है खिलवाड़ करती है हमारे साथ, बहुत ध्यान रखना चाहिए खास करके भक्तों को। ये माया जितना भक्ति में व्यक्ति प्रगति करने के लिए प्रयास करता है उतना माया जो है अपना जाल डालती है। तो दुख के साथ व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार डाल देती है कि क्या फायदा इतना भजन करने का, हमारे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमने इतना किया तो ऐसा क्यों हुआ, तो नाना प्रकार का विचार आता है। लेकिन कुंती महारानी को स्मरण करना चाहिए, कुंती महारानी ये माया को उन्होंने तोड़ दिया, कैसे तोड़ा कि ये श्लोक के द्वारा थोड़ा, अच्छा अभी हमारे जीवन में सुख है करके आप जा रहे हो और आने दो, दुख आने दो, जितना दुख है उतना ज्यादा आने दो, क्योंकि जब दुख होता है तो आपका स्मरण रहता है और आप हमारे साथ में रोग रक्षा करने के लिए। तो ये कुंती महारानी का ये जो श्लोक है उसके ऊपर प्रभुपाद जी ये तात्पर्य के आखिरी लाइन में लिखते हैं कि कृष्णा वॉज गोइंग अवे फॉर ए डिवोटीज डिस्ट्रेस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। दुख है, बाधाएं हैं, ये जो है वो भक्तों के लिए कृष्ण का स्मरण करने का एक मौका है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो, जो जिस व्यक्ति का जो अच्छा भक्त है उसके लिए रास्ते में कोई पत्थर है, तो पत्थर को अंधा व्यक्ति क्या करता है, उसको टकरा के नीचे गिर जाता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते अगर जिसका आँख खुला है वही पत्थर को देख के क्या करता है, उसके ऊपर पैर रख के लांग के चले जाता है। तो ये जो भक्ति मार्ग में जब हम प्रगति करते हैं, जो भगवत तत्व ज्ञान का विचार नहीं करते, अंधे भक्त होते हैं, ऐसे भक्त तो अंधा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस बात को स्पेसिफिकली कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से भागवत और भगवद्गीता को पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते, उसके ऊपर मनन नहीं करते, वो लोग जब भक्ति मार्ग में चलते हैं जब दुख नामक पत्थर आता है उसको टकरा के गिर जाते हैं। अगर जो भक्त आंख खोल के जाते हैं, गीता भागवत को आंख खोल के पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं और अभ्यास करते हैं और मनन करते हैं, उनका आंख खुला हुआ है, इसने भक्ति मार्ग में अगर बड़ा दुख नामक पत्थर भी आया उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चले जाते हैं, वो गिरते नहीं है। तो देखा गया है कि कुछ भक्त लोग बहुत सीरियस थी भक्ति को स्वीकार करने के बाद भी, वो लोग क्यों छोड़ देते हैं, केवल उसका एकमात्र कारण है क्योंकि वो किताबों को नहीं पढ़ते, गीता भागवत को नहीं पढ़ते, भगवद गीता भागवत के प्रवचन को श्रद्धा से बैठ के श्रवण नहीं करते, वो प्रवचन को कैसेट में सीडी में डाल के रोज श्रवण नहीं करते, वो भगवद गीता के श्लोकों को याद नहीं करते, उन लोगों का जीवन जो है हमेशा खतरे में रहता है। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि मालूम है कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी लुढ़क सकता है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे थे कि मेरा एक ही तकलीफ है कि मेरे सारे भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे कि किताबें वितरण करने के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। तो उन्हें कहा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ इतने सारे किताबों को अनुवाद करने के लिए, ये किसके लिए है, यह वितरण करने के लिए है, सही बात है वितरण करना है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। तो बड़ा मुझे दुख आता है, एक ही दुख है पूरा 10 साल के भी इस 10-11 साल में पूरा इस्कान में, जब मैं कोई भक्तों को देखता हूँ जो गीता पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, भगवद गीता भागवत पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं या पढ़ते नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि ये चल रहा है ना, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है ना, ऐसा सोचते हैं, तो उनको देख के बहुत तरस होता है। तो अगर बोलने भी जाएंगे नाना प्रकार का बहाना बनाएंगे कि टाइम नहीं है, वो है, ये है, लेकिन ये तत्व विचार आध्यात्म ज्ञान इत्यत्तम तत्व ज्ञान दर्शनम, जब दिति जैसे दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, शोक को त्याग किया और क्या किया, उन्होंने अपना चित्त को तत्व ज्ञान में लगाया। तो इससे दिति से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जितने प्रकार के हम बहाना बनाते हैं वो केवल शोक मात्र है। जो भक्त हमेशा रोता रहता, अरे ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका मतलब है उसका निश्चित रूप में कभी ना कभी पतन होगा ही। इट विल हैपन। व्हाई इट विल हैपन? बिकॉज तत्व विचार नहीं है। जो भी बहाना देते हैं नहीं पढ़ने का, वो सब केवल शोक का अनेकों प्रतिरूप मात्र है। इट इज नथिंग बट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ओन मिजरी। तो ये दिति और इस प्रसंग से, हिरण्यकश्यपु और दिति, ये सब जो प्रसंग से हमको यही शिक्षा मिलता है कि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर बार बार विचार करना चाहिए और प्रत्येक घटना जो भी घटता है उनके साथ हमारा संबंध जोड़ना चाहिए गीता श्लोकों के साथ। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस। हाँ अंतर ये है कि ये एक्सीडेंट में जिन लोगों को मृत्यु हुआ, उन लोगों को पहले थोड़ा सा भक्तों का संगति प्राप्त हुआ था। पहले वो लोग थोड़ा सा भागवत वगैरह किए थे, भक्तों की संगति में आए थे, तो भक्तों का संगति आने की वजह से उनको सुकृति हुआ, थोड़ा सा सुकृति प्राप्त हुआ था। ये सुकृति की वजह से उन्होंने क्या किया, उनका मृत्यु के समय में वो लोगों ने भागवत का आयोजन किया। तो भागवतम में भगवत तत्व ज्ञान का विचार है, तो इसलिए उनका निश्चित रूप में उद्धार होगा। जो पहली बार वो लोगों ने भागवत सुना था, जितना श्रद्धा और ध्यान से भागवत सुने थे पहली बार, उससे हजारों गुना श्रद्धा और भक्ति भाव से भी भागवत सुनेंगे। पहले जो उन्होंने किया वो सुकृति था, अभी जो कर रहे वो भक्ति कर रहे। अभी ये प्रसंग अभी हिरण्यकश्यपु का लेंगे, हिरण्यकश्यपु का पूरा प्रवचन सुनेंगे। इधर इस अध्याय में भगवान कृष्ण का वर्णन कभी नहीं किया उन्होंने, केवल आत्मा शरीर का भेद का ही वर्णन किया। तो ये जो आत्म तत्व का जो ज्ञान है, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल ये जानना, ये मात्र जानना पूर्ण ज्ञान नहीं। इट इज़ नॉट एनफ टू नो दैट आई एम नॉट दिस बॉडी एंड स्पिरिट सोल। इसका मतलब ये नहीं कि जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खाली फाउंडेशन बनाने से आप उस घर में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि फाउंडेशन के बिना घर बन जाएगा, है कि नहीं? फाउंडेशन भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, खाली फाउंडेशन बना के छोड़ दिया। फाउंडेशन मतलब क्या है, बोल दिया तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो। इसके वजह से ऐसा कुछ आभा लगता है वैराग्य का, लेकिन पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये लोग जो 9 लोग मर गए, उसके उपलक्ष्य में भागवतम का प्रवचन है, श्रीमद् भागवतम का, जिसके अंदर भगवत तत्व ज्ञान का वर्णन है। भले ही भागवतम में ये जो हिरण्यकश्यपु का जो प्रवचन है वो भी अगर लिया जाए, उसके अंदर नारद का नाम आता है, उसके अंदर यमराज का नाम आता है। तो नारद मुनि कौन है, यमराज कौन है, वो महाभागवत है, उनका नाम तो लेंगे, इसको भक्ति कहा जाता है। हिरण्यकश्यपु का प्रवचन में भक्ति नहीं था, केवल ज्ञान योग था, केवल ज्ञान, ये शरीर ही आत्मा हो। तो इसलिए उनका उद्धार होगा भी तो क्षणिक के लिए होगा, ओनली फॉर सम टाइम ओनली। There are 2 levels of knowledge. एक है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जानना। उससे परे है और एक ज्ञान है, मैं कृष्ण का दास हूँ। ये दोनों आत्माओं का, आत्मा का ही पहचान है। भगवद गीता में भगवान आत्मा का ज्ञान देते हुए उन्होंने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। लेकिन उसी से चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जब सनातन गोस्वामी ने पूछा हमें कि मैं कौन हूँ, तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी कहा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मैं कृष्ण का दास हूँ, वो ज्ञान ये भागवत में दिया जा रहा है, नौ लोग जो मर गए। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने हम सब कृष्ण के दास है वो बात गलती से भी नहीं कहेगा, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आपका प्रश्न का जवाब मिला। हाँ ऐसे भी भक्त है वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो प्रचार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ऐसा उतना राग अवस्था में पहुंचे हुए भक्त है, जब जरूरत पड़ेगा तो कृष्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। वासुदेव भगवती, ये श्लोक उसमें काम में आता है, वासुदेव भगवती भक्ति व प्रयोजित जनियत्याशु तुरंत ही, वासुदेव भगवती भक्ति व प्रयोजित जनियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, अहेतुकी इट विल कम, नो प्रॉब्लम। कोई इसमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज रीच द स्टेज ऑफ रागा, रागा के स्तर में तो ये अहेतुकी वो आ जाता है। ये प्रभुपाद जी जो है, जब अमेरिका में जितने भी लोगों से यहाँ प्रवचन दिए, एवरीथिंग सोल बॉडी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी जो है वो भाव और प्रेम के स्तर में नहीं है। इट इज़ नॉट सो, सो वी कैन डू एनीथिंग। वन माले प्रो इसमें एक्सपर्ट है। मुझे अनुभव है, बहुत सारे निमंत्रण आते थे कि अभी बस ये मरने वाले हैं, प्रभु जी आके कीर्तन कीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा वे क्या जाओ इधर, तो ऐसा सोचता था। लेकिन वन माले प्रो जब भी ऐसा मौका मिलता तुरंत पहुंच जाते थे। ऐसा हुआ कीर्तन करने के बाद कुछ समय के बाद खबर आए वो मर गए। अस्तित्व में वो घर वाले बुलाए थे वन माले प्रभु को कीर्तन करने के लिए, ताकि ये जल्दी मर जाए। तो हमारे को कहना ये है कि हमको ये मौके का फायदा लेना चाहिए, केवल उनके लिए नहीं अपने लिए भी। कि एक भक्त ने कहा, मैं एक बार, एक भक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने कहा कि आप जाओ थोड़ा सा सेवा करो। प्रभु जी मुझे हॉस्पिटल जाने में अच्छा नहीं लगता, भक्त ने कहा। मैंने भगवद गीता का श्लोक खोल के दिखाया, भक्तों का एक लक्षण क्या है। एक लक्षण है 13वां अध्याय, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। तो भगवदगीता में कहा है भगवान ने हॉस्पिटल जाया करो रोज। क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है जन्म कितना तकलीफ वाला है कि नहीं? तो ये श्लोक के अनुसार यही है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। तो आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो रोज हॉस्पिटल में जाके आओ। इसका मतलब तो यही है कि जन्म का दोष क्या है, देखो जन्म मृत्यु, रोज मृत्यु होता है, मृत्यु के क्या क्या दोष है देखो, मेरा भी ऐसा नंबर आएगा। और वृद्धावस्था, बेचारा बूढ़ा पड़ा हुआ है, उनके बच्चे झगड़ा कर रहे, इसका हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, तुम भरोगे मैं भरूंगा, देखो कितना दुख होगा बूढ़ा बेचारा को। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतना सारा दुख। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है वो। शुड गो दैट, डू दैट, हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी सुकृति होगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो नाला सोपारा में होने वाला था 7 और 8 को, और उसको पोस्टपोन किया गया है 21 और 22 को। तो रथ यात्रा होगा वो 22 तारीख को होगा, तो इसलिए आपसे नोटिस है। हरे कृष्णा।